بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا آشرے پراپت کیا ہے سورگیے محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भाग्य हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज बुधवार है, खुरदाद की 12, जून की 2 और शव्वाल की 21 तारीख। प्रोग्राम में पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा पेश होगी, उसके बाद आप सुनेंगे शौर्य गाथा। प्रोग्राम और सभा का अंतिम प्रोग्राम है आजकल। हज़रत अली सलाम फरमाते हैं कि झूठ बोलने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि झूठ बोलने वाला शख्स जब सच बोलता है तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir.ir। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 0098903506492। अब आप विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाह। राष्ट्रपति रूहानी का कहना है कि अमेरिका कई बार ईरान से हार चुका है। दुश्मनों ने सैयद हसन नसरुल्लाह के बारे में उड़ाई अफवाह, हिजबुल्लाह का कड़ा जवाब। तुर्क राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी दे दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार दावे को खारिज कर दिया। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद अली कुम्मी से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि वियना में अमरीकियों के साथ मुख्य मुद्दे हल हो गए हैं, सिर्फ छोटे मोटे बिंदु बचे हैं। डॉक्टर हसन रूहानी ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही। उन्होंने 42 साल पहले इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उस भाषण से पूरे ईरान में बड़ी लहर पैदा हुई, क्योंकि इस्लामी क्रांति में इमाम खुमैनी के विचारों का आधार आम जनता थी और इमाम क्रांति के लिए जनता में जागरूकता को मूल बिंदु मानते थे। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार के उपाय से ट्रंप खुद को अलग थलग पड़ने से नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप परमाणु समझौते JCPOA से निकलकर अकेले पड़ गए और क्षेत्र के एक रूढ़िवादी देश और ज़ायोनी शासन के सिवा किसी ने उनका साथ न दिया। ईरानी राष्ट्रपति ने अमरीकियों के उस बयान का हवाला देते हुए जिसमें अमरीकियों ने कहा था कि हमने JCPOA से निकलकर ईरान पर पाबंदी लगाई ताकि व्यवस्था गिर जाए, कहा कि क्या वे ऐसा कर सके। उन्होंने कहा था 3 महीने, फिर कहा 4 महीने और कहा 6 महीने बाद। जब देखा कुछ नहीं हुआ तो वार्ता की मेज पर लौट आए। ट्रंप ने पूर्वी एशिया के अपने अहम अधिकारी को सुप्रीम लीडर के पास बातचीत के लिए भेजा, खुद मुझसे कई बार बातचीत का अनुरोध किया। क्या ये अमरीकियों की हार के अर्थ में नहीं है?
ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि वियना वार्ता में मतभेद हल होने के लायक हैं। सैयद अब्बास इराक्षी ने कहा कि वियना में JCPOA के संयुक्त आयोग की बैठक में मतभेद ऐसी जगह पहुंचे हैं कि सभी सदस्यों का मानना है कि हल हो सकते हैं। अब्बास इराक्षी ने बुधवार को कहा कि आज रात की बैठक में संभवतः लौटने की तारीख के बारे में फैसला होगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनिधिमंडल गंभीर हैं और पूरी गंभीरता से बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि संभवतः बुधवार रात की बातचीत के बाद पिछले दौर की तरह सलाह मशवरे के लिए तेहरान आएंगे और फिर वियना लौट जाएंगे। JCPOA के संयुक्त आयोग की बैठक तेहरान के वक्त के मुताबिक बुधवार को शाम को वियना में आयोजित हो रही है, जिसमें ईरान, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की सभी पाबंदियों के हटने और उनके सत्यापन के बाद ही वो परमाणु समझौते के तहत अपने सभी वचनों को पूरा करेगा।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामले में विदेश सचिव ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अधिकारियों से भेंटवार्ता में यूक्रेन हवाई जहाज हादसे के बारे में एक रिपोर्ट पेश की, जो इस हादसे की तकनीकी और आपराधिक आयाम की समीक्षा पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामलों में विदेश सचिव मोहसिन बहारवन ने मंगलवार को ईरान और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत के तीसरे दौर की बातचीत के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बहारवन ने एक रिपोर्ट पेश की, जो इस हादसे की तकनीकी और आपराधिक आयाम और हादसे के पीड़ितों के परिजनों को हर्जाना देने के संबंध में ईरान की ओर से उठाए गए कदम के बारे में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के कई पीड़ित परिवारों को अब तक हर्जाना दिया जा चुका है।
ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के उपरक्षा मंत्रियों के बीच भेंटवार्ता हुई। इरना के अनुसार ईरान के उपरक्षा मंत्री हुज्जतुल्लाह कुरैशी और रूसी उपरक्षा मंत्री अलेक्सांद्र फोमिन के बीच बुधवार को मॉस्को में हुई भेंटवार्ता में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के मार्गों की समीक्षा हुई। दोनों पक्षों के बीच सैन्य तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के बारे में बातचीत हुई। ईरान रूस के बीच हालिया वर्षों में राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयाम की तरह रक्षा व सैन्य सहयोग भी बढ़ा और उपलब्धि भी हासिल हुई।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने सैयद हसन नसरुल्लाह के स्वास्थ्य के बारे में खबरों को अफवाह बताया है। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी समा ने सैयद हसन नसरुल्लाह के स्वास्थ्य बिगड़ने के बारे में फैलाई जाने वाली अफवाहों के बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख के निकटवर्ती सूत्र ने कहा कि वो पूरी तरह से ठीक हैं और उनके कोरोना में ग्रस्त होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। क्षमा कीजिएगा, फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी समा द्वारा सैयद हसन नसरुल्लाह के स्वास्थ्य बिगड़ने के बारे में फैलाई जाने वाली अफवाहों के बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख के निकटवर्ती सूत्र ने कहा कि वो पूरी तरह से ठीक हैं और उनके कोरोना में ग्रस्त होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के उपाध्यक्ष ने अतिग्रहणकारी ज़ायनी शासन के षड्यंत्रों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि लेबनान की मुक्ति का एकमात्र मार्ग सरकार का गठन है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार शेख नईम कासिम ने कहा कि इस समय परिस्थिति इस प्रकार है कि सांप्रदायिक समस्याओं, मामलों और दबावों को लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि सरकार का गठन पूरी तरह एक आंतरिक मामला है और सरकार गठन के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट मतभेदों का समाधान न होना है, जिसकी कीमत देश और देश के लोग चुका रहे हैं।
ज़ायोनी सैनिकों ने रामल्ला में हमास के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायोनी सैनिकों ने फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध संगठन हमास के एक नेता जमाल तवील को रामल्ला में गिरफ्तार कर लिया। न्यूज एजेंसी तस्नीम ने अलजजीरा के हवाले से बताया कि काफी समय से ज़ायोनी सैनिकों को हमास के नेता जमाल तवील की तलाश थी और ज़ायोनी सैनिकों ने पिछले दो दिनों के दौरान उनके दो बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया था।
लोकतांत्रिक मोर्चा ने ज़ायोनी शासन द्वारा फिलिस्तीनियों के दमन पर चेतावनी दी है। लोकतांत्रिक मोर्चा ने एक बयान में कहा कि ज़ायोनी फिलिस्तीनी जन आंदोलन को कमजोर व खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर रोजाना फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मोर्चा ने इन गिरफ्तारियों पर स्वशासित फिलिस्तीनी प्रशासन की खामोशी और ज़ायोनी शासन के साथ रामल्ला के सुरक्षा सहयोग की आलोचना करते हुए बल दिया कि यह खामोशी स्वशासित फिलिस्तीनी प्रशासन की फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में अपनी जिम्मेदारियों से बचने के अर्थ में है। लोकतांत्रिक मोर्चा ने इस बात का ऐलान किया कि अब आगे से ज़ायोनी शासन के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता के प्रतिरोध से जुड़ी गतिविधियां हर हफ्ते शुक्रवार को अंजाम दी जाएंगी। इस मोर्चे ने स्वशासित फिलिस्तीनी प्रशासन से ज़ायोनी सैनिकों और अवैध रूप से बसाए गए ज़ायोनियों के अत्याचार के खिलाफ फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का समर्थन करने की मांग की।
زائنی شاسن کے پردھان منتری نے کہا کہ اگر امریکہ سے دوستی اور اسرائیل کے استتو کے لیے خطرے سے مقابلے میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو اسرائیل دوسرے کو پراتھمکتا دے گا۔ نتنیاہو نے ایران کو اسرائیل کے استتو کے لیے خطرہ بتاتے ہوئے بل دیا کہ تل اویو واشنگٹن سے دوستی اور اسرائیل کے لیے چنوتیوں سے مقابلے میں سے دوسرے کا چین کرے گا۔ زائنی شاسن کے پردھان منتری کا یہ بیان ایسی استھتی میں سامنے آ رہا ہے جب اسرائیل کے پاس 200 سے زیادہ پرمانو وار ہیڈز موجود ہیں اور وہ انتراشٹریہ پریویکشکوں کو اپنے پرمانو پرتشٹھانوں کے نرکشن کی اجازت بھی نہیں دیتا۔
ترک راشٹرپتی رجب طیب اردوگان نے امریکہ کو سچت کیا ہے کہ اگر ترکی کو حشے پر ڈھکیلنے کی کوشش ہوئی تو امریکہ اپنا پرانا اور اہم دوست کھو دے گا۔ انہوں نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو میں امریکی راشٹرپتی بائیڈن کے حالیہ بیان کی کڑی آلوچنا کی، جس میں انہوں نے پہلے وشو یدھ میں ترکی کی عثمانی سلطنت پر آرمینیا کے ناگرکوں کے نرسنگار کا الزام لگایا تھا۔ اردوگان نے اس الزام کی کڑائی سے نندا کرتے ہوئے اسے رد کیا تھا اور بائیڈن کو سچت کیا تھا کہ ترکی سے سمبندھ خراب کرنے کا نتیجہ ایک مولیوان دوست کو کھونے کی شکل میں سامنے آئے گا۔
پشچم بنگال کی مکھیہ منتری ممتا بنرجی نے کیندر سرکار کے اس دعوے کو سرے سے خارج کر دیا کہ اس سال دسمبر تک پوری آبادی کو ٹیکہ لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر 2021 سے پہلے سبھی ناگرکوں کے ٹیکہ کرن کا وعدہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ کیندر سرکار صرف نرادھار باتیں کہتی ہے۔ کیندر سرکار راجیہ سرکاروں کو ٹیکے نہیں بھیج رہی ہے، کیندر کو راجیوں کے لیے ٹیکے خریدنے چاہیے اور اسے سبھی کو مفت دینا چاہیے۔
روس کے ودیش منتری سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ بھارت S-400 میزائل رکشا پرنالی خریدنے کے پرتی کٹیبدھ ہے۔ سماچار ایجنسی فارس کی رپورٹ کے انوسار سرگئی لاوروف نے منگلوار کو برکس دیشوں کے ودیش منتریوں کی بیٹھک کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ روس سے S-400 میزائل رکشا پرنالی خریدنے کے بارے میں بھارت سے جو سہمتی ہوئی ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی پریورتن اتپن نہیں ہوا ہے اور نئی دلی اس سمبندھ میں ہوئے سمجھوتے کے پرتی کٹیبدھ ہے۔ بھارت، روس، چین، برازیل اور دکشن افریقہ برکس کے سدسیہ دیش ہیں۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے COVID-19 کے بھارتی ویریئنٹ کے ایک اسٹرین کو ادھک گھاتک بتایا ہے، جس کا ویگیانک نام B.1.617 ہے اور اب اس کا نام بدل کر ڈیلٹا ہو گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ بھارتی ویریئنٹ کا B.1.617 اسٹرین چنتا جنک ہے۔ یہ اسٹرین دنیا کے 50 سے زیادہ دیشوں میں پایا گیا ہے۔
امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن نے کہا کہ ابھی بھی امریکہ میں نسل پرستی موجود ہے۔ انہوں نے امریکی راج اوکلاہوما کے ٹلسا شہر میں گورے لوگوں کے ہاتھوں شامورن کے لوگوں کے جنسنگار کی 100ویں برسی پر کہا کہ یہ امریکی اتہاس میں کالے ادھیائے ہیں جنہیں سویکار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ کاریہ ہے جسے دنیا کے لوگ انجام دیتے ہیں اور ہمیں برے بھلے میں انتر کرنا چاہیے۔
تاجکستان کے راشٹرپتی آج 2 جون کو ایک اچ استری پرتنیدھی منڈل کے ساتھ پاکستان کی یاترا پر جا رہے ہیں۔ سماچار ایجنسی فارس کی رپورٹ کے مطابق امام علی رحمان پاکستان کے پردھان منتری عمران خان سے بھیٹ وارتا کریں گے اور دونوں دیشوں کے نیتا کچھ سمجھوتوں پر دستخط بھی کریں گے۔ دونوں پکش ویاپار، ارجا، پرتیرکشا اور پرسپر روچی کے وبھن وشیوں کے سمبندھ میں وچاروں کا آدان پردان کریں گے۔
افغانستان کی پولیس نے بتایا کہ منگلوار کی رات کو کابل کے پشچم میں ایک بم وسفوٹ ہوا جس میں 10 ویکتی ہتات اور 12 انیہ گھائل ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تیران سے انتراشٹری سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनैतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे यमनी जियालों के बढ़ते कदमों के बारे में और फिर बात करेंगे अमेरिका में लगातार बढ़ती नस्लवाद की घटनाओं से चिंतित संयुक्त राष्ट्र संघ की। और फिर चर्चा करेंगे ईरान में बनी पहली इलेक्ट्रिक बस की
इन ऑटोबस
और अंत में चलेंगे भारत, जहाँ कोरोना महामारी की दूसरी लहर में आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में डॉक्टरों की मौत की बात भी सामने आई है।
पूरे भारत में अब तक 594 डॉक्टरों की कोविड से संक्रमित होकर मौत हो चुकी है।
तो सबसे पहले चलते हैं यमन और बात करते हैं यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों द्वारा लगातार हमलावरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की, साथ ही मैदान छोड़कर भागते सऊदी अरब के भाड़े के सैनिकों के बारे में बताएंगे। इस संबंध में सना से IRIB के संवाददाता अब्दुल्ला अली यूसुफी एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी की आवाज में।
सऊदी अरब के जीजान इलाके में यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों द्वारा की जा रही जवाबी कार्रवाई की हर दिन नई तस्वीर सामने आ रही है। सामने आने वाले नए फुटेज में जबलुल दूद, अल रूमिये और जहफान इलाके में सऊदी एजेंटों के ठिकानों पर हुए हमले को देखा जा सकता है। इस ऑपरेशन में सूडानी भाड़े के सैनिकों के 30 सैन्य ठिकानों को यमनियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यमनी सेना के एक वरिष्ठ कमांडर का कहना है कि हमारी सेना सैन्य ट्रेनिंग के हिसाब से दुश्मन के भाड़े के सैनिकों से बहुत अधिक शक्तिशाली है और हर मोर्चे पर दुश्मन पर भारी है। यमन के सूचना व प्रसारण मंत्री जैफुल्ला शामी कहते हैं कि यमनी सेना की पहली और असली उम्मीद ईश्वर से है और उसके बाद देश के सच्चे और जियाले संघर्षकर्ताओं से है। हमारी जीत में कोई संदेह नहीं है। नष्ट हुए सैन्य उपकरणों और उनके जलने के दृश्य सऊदी अरब की सेना को हुए भारी नुकसान को दर्शा रहे हैं। साथ ही युद्ध ग्रस्त इलाके के सूत्रों ने 32 बख्तरबंद वाहनों के नष्ट होने और 70 से अधिक सऊदी एजेंटों के मारे जाने और घायल होने की भी पुष्टि की है। दुश्मन को हमारा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम जितना आम नागरिकों पर बमबारी करोगे, हम उसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। दुश्मन सेना को लगातार मिलती पराजय और बड़े पैमाने पर उनका मैदान छोड़कर भागने के कारण सऊदी वायुसेना अपने एजेंटों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मजबूर हो गई है। इसके अलावा अपनी हार से खिसिया सऊदी अरब सादा प्रांत के सीमावर्ती गांवों और मारी प्रांत के आसपास के इलाकों पर लगातार हवाई हमले जारी रखे हुए
हैं।
और अब चलते हैं अमेरिका और बात करते हैं इस देश में पैर पसारते नस्लवाद की, साथ ही 100 वर्ष पूर्व टल्सा में हुई भयानक घटना के पीड़ित अभी भी इंसाफ के इंतजार में हैं। इस बारे में यूएन से IRIB के संवाददाता कामरान नजफजादे अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम की आवाज में।
जो बाइडन टल्सा शहर के म्यूजियम पहुंचे, जहां 100 वर्ष पहले श्वेतों के एक गुट ने 18 घंटों तक खून की होली खेली, 10,000 अश्वेतों को बेघर कर दिया और 300 लोगों की हत्या कर दी। अभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सामूहिक कब्रों को ढूंढ रहा है, अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है। पीड़ित परिवार वाले इस 107 वर्ष की महिला की तरह अभी भी इंसाफ की उम्मीद में हैं। इसी तरह कुछ और बचे हुए लोग जो अब बूढ़े हो चुके हैं, उस दिन की भयावह घटना को याद करते हुए बच्चों को बताते हैं कि उन पर क्या गुजरी थी, कैसे शहर जल रहा था। 100 साल गुजरने के बाद UN ह्यूमन राइट्स वॉच के प्रमुख लुइस चारबोनियो कहते हैं,
व्हाइट सुप्रीमेसी,
हम श्वेत लोगों में नस्लवाद को बढ़ावा देने वाले विचारों को ज्यादा देखते हैं। टल्सा के पीड़ितों के वंशज अब मुआवजे के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास कर रहे हैं। संभव है कि मुआवजा मिलने में वक्त लगे, चाहे जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति वादा ही क्यों ना करें। हालांकि बढ़ता ग्राफ और आंकड़े स्पष्ट हैं। वहीं टल्सा घटना के 100 वर्ष और फ्लॉयड की मौत के एक साल बाद अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में बढ़ते नस्लवाद को लेकर चिंतित है।
कामरान नजफ़साद, खबरगुज़री صدا و سیما, سازمان ملل।
और अब चर्चा करते हैं ईरान के पवित्र नगर मशहद में देश की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक बस की। यह नई बस पर्यावरण को बेहतर बनाने में सहायक साबित होगी। पवित्र नगर मशहद से IRIB के संवाददाता मेहंदी रहनुमा की रिपोर्ट हमारे साथी हसन अब्बास की आवाज में।
पवित्र नगर मशहद में स्वदेशी इंजीनियरों द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बस का अनावरण हुआ। पेंटोग्राफ तकनीक से छत से चार्ज होना, ब्रेक ऊर्जा को रिसाइकल करने की क्षमता और साथ ही एक बार चार्ज से 250 किलोमीटर तक चलना इस इलेक्ट्रिक बस की कुछ विशेषताएं हैं।
इन ऑटोबस अलाउ वेरिंग के
जहां ये इलेक्ट्रिक बस पूरी तरह स्टैंडर्ड है, वहीं इको फ्रेंडली भी है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और साथ ही डीजल बसों के मुकाबले में इसका इस्तेमाल करना काफी आसान है। इसी के साथ इसकी रिपेयरिंग और इसका रखरखाव भी काफी आसान है। मपना कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने उद्घाटन समारोह में कहा कि डिजाइनिंग और निर्माण की दृष्टि से ये बस 100% स्वदेशी है। ये हमारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के विस्तार का हिस्सा है। विश्व स्टैंडर्ड के अनुसार इसको अपग्रेड करना और अप टू डेट बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। ये एक नई गाड़ी है, दुनिया में भी ये एक नई तरह की तकनीक है। हमारा लक्ष्य इसका ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना है ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाने में सहयोग कर सकें। उद्घाटन समारोह के अंत में मपना कंपनी और मशहद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। समझौते के तहत हमें 100 बसें देनी है, जिनमें से 10 बसें तो हम तुरंत ही दे देंगे। ये इलेक्ट्रिक बस बुधवार से ही मशहद में ट्रायल के तौर पर चलने लगी है। ये बस पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके निर्माण में लगभग 6.5 अरब तुमान की लागत आई है, जो 50% विदेशी लागत से कम है।
مهدی راهنما خبرگزاری صدا و سیما مشهد مقدس
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا اور بات کرتے ہیں بھارت میں کرونا مہاماری کی دوسری لہر میں 594 ڈاکٹروں کی موت ہو چکی ہے اس میں سب سے زیادہ دلی میں ڈاکٹروں کی موت ہوئی ہے اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں دلی سے ہمارے سمواددات شمشاد کاظمی
بھارت میں کووڈ 19 کی دوسری لہر یدپی کم ہو رہی ہے اور کرونا سنکرمتوں اور مرتکوں کی سنکھیا میں کمی آ رہی ہے لیکن اس لہر نے عام انسانوں کے ساتھ ساتھ چکتسکوں کو بھی نہیں بخشا ہے कोविड से संक्रमित होकर सैकड़ों डॉक्टरों की जानें रोगियों का उपचार करते हुए चली गई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान पूरे भारत में अब तक 594 डॉक्टरों की कोविड से संक्रमित होकर मौत हो चुकी है। IMA के अनुसार इस बीमारी से सबसे अधिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों की मौत हुई है। दिल्ली के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड से भी डॉक्टरों के इस महामारी में जान गंवाने का समाचार मिला है। IMA के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के इस दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में 107, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 67, राजस्थान में 43 और झारखंड में 39 डॉक्टरों की मौत हुई है। उधर भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में यद्यपि थोड़ी वृद्धि हुई है और ये 1,33,048 तक रही है और मृतकों की संख्या 3,204 रही है, लेकिन 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए कोरोना संक्रमितों से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,31,277 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। दिल्ली सहित देश के 15 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जारी हैं, जबकि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कोरोना के 576 नए मामलों और 103 रोगियों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली में जहां लॉकडाउन की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो जाएगी, इस समय कोरोना के 9664 रोगियों का उपचार हो रहा है। इसी बीच भारत में कोरोना से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन की प्रक्रिया जारी है और अब फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन का भारत आने का रास्ता भी साफ हो गया है। उक्त दोनों कंपनियों की वैक्सीन को लोकल ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी भारत में आयात शुरू हो गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस वर्ष के अंत तक सभी नागरिकों को टीके लगा दिए जाएंगे। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम शौर्य गाथा।
शौर्य गाथा। दोस्तों, प्रोग्राम शौर्य गाथा की एक और कड़ी के साथ स्वाति और कायम रिजवी हाजिर हैं। इस कड़ी में करबला 5 सैन्य ऑपरेशन के बाद राजनीतिक व रणनीतिक हालात, पूर्व और पश्चिम की दो बड़ी ताकतों और उनके पिट्ठुओं की ओर से सद्दाम शासन का समर्थन होने के बारे में बताएंगे। आशा है इस कड़ी को आप पसंद करेंगे।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम शौर्य गाथा में 80 के दशक में ईरान पर इराक के बासी सद्दाम शासन के हमले के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की पवित्र प्रतिरक्षा और इस दौरान ईरानी राष्ट्र के वीर सपूतों के शौर्य के बारे में बता रहे हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने 1986 में सैन्य सफलता हासिल करके और इराक के समर्थकों के मुकाबले में दृढ़ता दिखाकर जंग के राजनीतिक व रणनीतिक संतुलन को अपने हित में मोड़ लिया। इस प्रक्रिया में ईरान की बेहतर स्थिति ने यह दर्शा दिया कि ईरान जंग के संतुलन को बदलने और उसे अपने हित में मोड़ने के लिए जरूरी क्षमता रखता है। ईरान की बेहतर स्थिति इराक के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों के चिंतित होने की मुख्य वजह थी और साथ ही ईरान की जायज मांग की उनकी ओर से अनदेखी होने की भी वजह थी। इस बीच ईरान की बेहतर स्थिति को प्रभावित करने के लिए जंग के रणनीतिक व राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया पर असर डालने और स्थिति को काबू में करने हेतु अमरीकी और पूर्वी सोवियत संघ की गतिविधियां बढ़ गईं, जिसके नतीजे में जंग को खत्म करने की पृष्ठभूमि बनाना 1986 और 1987 में जंग के मुख्य लक्ष्य थे।
करबला 5 सैन्य ऑपरेशन के बाद सद्दाम शासन ने राजनीतिक व रणनीतिक क्षेत्र में जंग के संतुलन को बदलने के लिए कुछ कदम उठाए। सद्दाम शासन ने रूसी और अमेरिकी हथियारों से ईरान के व्यापारिक जहाजों और तेल के टैंकरों को निशाना बनाकर जंग को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश की। इसी तरह उसने फारस की खाड़ी में पूर्वी और पश्चिमी ताकतों को पैर जमाने का मौका देकर रणक्षेत्र में इराकी सेना पर पड़ने वाले दबाव को कम करने की कोशिश की। इराकी तानाशाह ने इस परिप्रेक्ष्य में शहरों और औद्योगिक, आर्थिक व शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबी दूरी के मिसाइल्स और फाइटर जेट से हमले बढ़ा दिए। فارس کی کھاڑی میں پورب اور پشچم کی دو طاقتوں اور ان کے پٹھوں کی نوکاؤں کے آنے سے صدام بڑی حد تک جنگ کے پھیلانے اور اسلامی گنتنتر ایران پر دباؤ بنانے میں سفل ہو گیا تھا۔ نئے حالات میں ایران پر دباؤ بڑھایا گیا اور عراق کی باسی سینا پر ایران کی جیت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کام کے لیے شیتری دیشوں اور بڑی طاقتوں نے عراق کی پہلے سے زیادہ راجنیتک، آرتھک و سینی مدد کی۔
اس بارے میں جاپان سے چھپنے والے اخبار کیزائی نے لکھا تھا کہ ادھر کچھ مہینوں سے ایران عراق جنگ ایران کے ہت میں مڑتی جا رہی ہے۔ حالانکہ دو بڑی طاقتوں نے کہا کہ وہ جنگ میں نشپکش ہیں، لیکن جنگ کی موجودہ استھتی میں انہوں نے ایران پر پابندی لگانے کا فیصلہ لیا۔ دونوں بڑی طاقتیں جنگ میں عراق کے خلاف ایران کو جیت سے روکنا چاہتی ہیں۔ یہ جاپانی اخبار دو بڑی طاقتوں کی عراق کا سمرتھن کرنے کی کوشش کی ویاکھیا میں پورو سوویت سنگھ کی کمیونسٹ پارٹی کی کیندریہ کمیٹی کے ایک سدسیہ کی اگوائی میں اس دیش کے بڑے ششٹمنڈل کے عراق دورے کا ذکر کرتا ہے، جس میں یہ ششٹمنڈل صدام سے ملاقات کرتا ہے۔ اس ملاقات میں عراق اور پورو سوویت سنگھ کے بیچ 15 ورشیہ سمجھوتے کی اودھی کو دوبارہ بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اخبار تتکالین امریکی راشٹرپتی ریگن کے وشیش دوت کے عراق دورے کا بھی ذکر کرتا ہے۔
ایران کے لیے کربلا 5 سینی آپریشن کے بعد رن کھیتر میں سفلتا کے ذریعے راجنیتک چھوٹ حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ بہت کٹھن ہو گیا بلکہ موجودہ استھتی کو بچانے کے لیے بھی اس کے سامنے بہت چنوتیاں کھڑی ہو گئی تھی۔ دوسرے شبدوں میں ایران افسر خطروں اور پابندیوں کے بیچ میں تھا، جس سے نکلنے کے لیے فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل لگتا تھا۔
اس بارے میں برٹش اخبار دا گارڈین کی سمیکشا اپنی اور دھیان کھینچتی ہے۔ دا گارڈین نے لکھا تھا کہ ایران جنگ میں جتنی جیت حاصل کرتا جا رہا ہے، انتراشٹری استر پر اتنا ہی اکیلا پڑتا جا رہا ہے۔ عراقی مثال ایک اور امریکہ اور پورو سوویت سنگھ کا عراق کا ساتھ دینا اور دوسری اور عراق کو اپنی اور ملانے کے لیے ان دونوں کے بیچ جاری پرتسپردھا ہے۔ اصل میں ایران کی استھتی کے بہتر ہونے سے اس اور سے چنتائیں اور خطرے بڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایران کے خلاف اور دباؤ بڑھتا تھا۔ جیسا کہ امریکہ اور پورو سوویت سنگھ کے بیچ آپس میں سہیوگ اور ان دونوں کی اور سے عراق کے پرتی سمرتھن بہت بڑھ گیا تھا، اس سہیوگ و سمرتھن کی خبریں میڈیا میں بھی خوب چرچا کا وشے بنتی تھیں۔
دراصل ایران کا مقابلہ صرف باسی سینا سے نہیں تھا بلکہ دو بڑی طاقتوں اور ان کے پٹھوں سے بھی مقابلہ تھا، جو صدام کے باسی شاسن کی راجنیتک، آرتھک و سینی مدد کر رہے تھے۔ صدام نے اسی مدد کی چھتر چھایا میں باسی سینا کی اکائیوں میں سدھار کی کارروائی کی۔ کربلا 5 سینی آپریشن اور ایران کی زمینی کارروائی جاری رکھنے کی شمتا کے ظاہر ہونے کے بعد عراق کے باسی شاسن نے اپنی سینی ویوستھا میں مول بدلاو لانے کا فیصلہ کیا۔ اس آدھار پر باسی سینا کی 20 سے 30 بریگیڈ وبھن مورچوں سے واپس بلا لی گئی اور انہیں دوبارہ ٹریننگ دی جانے لگی تاکہ انہیں پھر سے سنگٹھت کیا جائے۔ اس قدم سے ایک نئی حملہ وار فورس کا گٹھن ہوا، جس نے عراقی ریپبلکن گارڈز کے ساتھ مل کر عراقی سینا کی نئی طاقت دی۔ اس طرح صدام نے اپنی رکشاتمک نیتی کو آکرامک رڑنیتی میں بدلا۔ یہ فیصلہ عراقی باسی شاسن کی سینی طاقت میں کرانتی لانے کے لیے بڑا قدم تھا۔
ایران نے بھی جنگ کے مورچے پر بدلاؤ کیے۔ IRGC کے سینے کمانڈروں کی اور سے کربلا 5 اور کربلا 8 سین آپریشن کی سمیکشا کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ دکشنی مورچے پر کوئی اچت جگہ نہیں ہے جس پر نینترن کے لیے رچناتمک کاروائی کی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایرانی ویر آبادان پرایادیپ کے ہور علاقے تک سین آپریشن کر چکے تھے اور اب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جسے باسی دشمن کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اگر اس علاقے میں کارروائی کرنے کا فیصلہ لیا جاتا تو ایرانی فورسز کو انویلپنگ اٹیک کی جگہ ایک مورچہ بنانا پڑتا اور اس ٹیکٹک کا سفل ہونا مشکل تھا۔ انویلپنگ اٹیک کی ٹیکٹک کے تحت ایرانی فورس باسی دشمن کی فورس کو سامنے الجھا کر اصل حملہ پیچھے سے کرتی تھی۔ اس اٹیک میں اسلامی ویروں کے سامنے یہ موقع رہتا تھا کہ وہ باسی سینا سے سیدھے ٹکرانے کے بجائے اسے پیچھے سے گھیر کر اس کی طاقت کو قینچی کی طرح کاٹ کر ان سے لڑیں۔
جب کربلا پاس سینی آپریشن ختم ہوا تو دکشنی مورچے کے علاقے کی سمیکشا سے ظاہر ہو گیا کہ اب اس علاقے میں انویلپنگ اٹیک ممکن نہیں ہے، جس کا مطلب تھا کہ جنگ کے مورچے پر رچناتمک اور باسی دشمن سے سامنے سے لڑنے کی سمبھاونا ختم ہو گئی تھی۔ اس آدھار پر ایران نے بھی اپنی سینی ٹیکٹک اور سینی کارروائی کی نیتی بدل دی۔
اتری مورچے پر دھیان دینے کا مکھ ادیش عراق کی بھومی کے اس علاقے میں مولیوان سینی لکش حاصل کرنے کے لیے پہل اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا۔ اسی طرح عراقی سینا کو بانٹ کر اسے اتری مورچے پر بھیجنا تھا تاکہ اس طرح دکشنی مورچے پر باسی سینکوں کی تعداد کم ہو جائے۔ دستکوڑ میں اس بدلاؤ کے ساتھ ایرانی فورسز نے جنگ کے میدان کو دکشن سے پشچموتر میں بدل کر پہلا بڑا حملہ دیش کے پشچمی مورچے پر کرنے کی یوجنا بنائی۔ اس رڑنیتی کے تحت ایرانی فورسز نے 14 اپریل 1987 کو ماوت ایکسس پر کربلا 10 سین آپریشن کی یوجنا بنائی۔ IRGC فورس نے اس آپریشن کی یوجنا بنائی اور اسے انجام دیا۔ اس آپریشن کے دو بھاگ تھے، ایک سینی ٹیکٹک اور دوسرا گوریلا ٹیکٹک۔
رمضان چھاوی نے عراقی کردستان کی پیٹریوٹک یونین فورس کی مدد سے اس آپریشن کے گوریلا بھاگ کو انجام دیا۔
فتح 5 سین آپریشن کے دوران ایک فوجی ایسی حالت میں شیر پڑھ کر ساتھیوں میں لڑنے کے لیے جوش پیدا کر رہا ہے جب ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر فرنٹ لائن کی اور روانہ ہو رہے ہیں۔
درمیان انفجار و غرش توپ و گلوله صف به صف سنگر به سنگر حمله بر کافر خوشد، در شبیخون شب خون در شبیخون شب خون گاو الهاب و رساندن پیک گرهان را به گردان لشکر و لشکر خوشد۔
یہ کارروائی عراق کے سلیمانیہ شہر کے اتری بھاگ میں کی گئی، جس کا نام یانگ سمر تھا۔ یہ کارروائی کربلا 10 آپریشن کی پورک کارروائی تھی، جسے فتح کے 5 نام سے انجام دیا گیا۔ عراقی کردستان کی پیٹریوٹک یونین فورس کو عراقی باسی سینا کی دو چھاونیوں کو دھوست کرنے اور پیٹریوٹک یونین کے پیٹ والے علاقے کو نجف چھاونی کے علاقے سے جوڑنا تھا کہ اس چھاونی پر کربلا 10 آپریشن کے سینی بھاگ کی کارروائی کی ذمہ داری تھی۔ تو دوستوں، آج کا پروگرام یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ آج کل
دوستوں، दोस्तों कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज हम कोविड 19 महामारी के प्रभाव के बारे में बातचीत करेंगे। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
कोविड 19 महामारी को इस शताब्दी की सबसे बड़ी और व्यापक चुनौती करार दिया गया है। इसने विश्व भर के लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। कोरोना वायरस ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में इसका असर दिखाई पड़ता है।
यूं तो प्राचीन काल से ही इंसान महामारियों से जूझता रहा है और इन महामारियों ने इंसानी जीवन पर व्यापक असर डाला है। इन बीमारियों से संकट उत्पन्न हुए हैं और लोगों में भय और बेचैनी पैदा हुई है, तो वहीं उनके कारण इंसान ने जीवन के बारे में अधिक जानकारियां भी प्राप्त की हैं। इन संकटों का कारण बनने वाली बीमारियों ने कभी कभी दुनिया भर के लेखकों, दार्शनिकों और कलाकारों पर जबरदस्त प्रभाव डाला है, जिसके बाद उन्होंने कला, दर्शन और साहित्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
कई कलाकारों और लेखकों ने महामारियों को अपनी कला और साहित्य के निर्माण के लिए एक आकर्षक विषय के रूप में इस्तेमाल किया है और इसके माध्यम से अस्तित्व और मृत्यु जैसे मानव जीवन के गहरे अर्थों की खोज की है और मानवीय मूल्यों को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखा है। कुछ दार्शनिकों ने महामारियों का सामना एक रूपक के तौर पर किया है और दार्शनिक धारणाओं को समझाने के लिए उनका प्रयोग किया है।
2019 के आखिर में विश्व भर में कोविड-19 महामारी फैल गई, जिसने एक बार फिर लोगों को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उनका प्रभाव चिकित्सा के क्षेत्र से कहीं व्यापक हो गया। कोरोना वायरस ने शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति और कला के क्षेत्रों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। वास्तव में कोरोना ने आज के इंसान के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। सामाजिक संपर्क के सबसे सरल नियमों से लेकर जीवन और मौत जैसे सबसे अटल मानवीय सिद्धांतों तक सभी को प्रभावित किया है।
कोरोना फैलने के कारण अनेक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कि सम्मेलनों का आयोजन, प्रदर्शनियां और सिनेमा हॉलों का बंद होना, थिएटरों और किताबों की दुकानों का बंद होना और विश्व बाजार पर इसका प्रभाव ऐसे कुछ उदाहरण हैं। लंदन स्थित गार्डियन अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, संगीत प्रकाशन, वीडियो गेम्स और कला प्रदर्शनी सहित विभिन्न क्षेत्र 2019 की तुलना में पिछले साल अधिक प्रभावित हुए हैं और इनमें 31% की गिरावट देखी गई है। पर्यटन से होने वाली आमदनी में भी 27% की गिरावट दर्ज की गई है।
यूरोपीय लेखकों और कलाकार संगठनों की सिफारिश पर तैयार की गई इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ यूरोप की विमानन कंपनियों को पिछले एक साल के दौरान 31.4% घाटा हुआ है। इस क्षेत्र को संस्कृति और कला के क्षेत्र से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में यानी कोरोना के फैलाव से पहले यूरोपीय कला और संस्कृति क्षेत्र किसी विद्युत संयंत्र की तरह फैल रहा था। 7.6 मिलियन से अधिक श्रमिकों और 643 बिलियन यूरो के कारोबार के साथ यूरोपीय संघ की सकल आय में इसकी भूमिका लगभग 4.4% थी।
इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक मार्क लेमिट का कहना है, कोरोना के प्रकोप की शुरुआत के साथ हमने हजारों सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्रों को बंद करने के गंभीर परिणाम देखे हैं। इस महामारी के शुरुआत के बाद सबसे पहले संस्कृत ने अपनी गतिविधियों को निलंबित किया और संभवतः ये आखिरी क्षेत्र होगा जो पूरी आजादी से अपनी गतिविधि फिर से आरम्भ कर पाएगा।
लिमिट के अनुसार प्रदर्शन कला और संगीत क्षेत्रों से होने वाली आय में क्रमशः 90% और 76% की गिरावट आई है। दृश्य कला, किताबें, पब्लिकेशन, सिनेमा और टेलीविजन जैसे क्षेत्रों में आय में 20% से 40% की कटौती हुई है। हालांकि वीडियो गेम्स के कारोबार में 9% की वृद्धि देखी गई है। सिनेमा घरों, संग्रहालयों और थिएटरों और कॉन्सर्ट हॉलों के जल्दी बंद होने और गर्मियों के सम्मेलनों के रद्द होने से, जिनमें युवा कलाकारों और प्रतिभाओं को पहचाना जाता है, दुनिया भर में इस उद्योग को बड़ा झटका लगा है और इसका प्रभाव वर्षों तक महसूस किया जाएगा।
रिपोर्टों और समीक्षाओं में कहा गया है कि अगर उत्पादन और वितरण और लाइव आयोजन को जल्द से जल्द फिर से शुरू नहीं किया गया तो नई परियोजनाओं में निवेश की गई पूंजी को खोने का भय है। इसके बावजूद सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से लगभग आधे लोगों ने कहा है कि वे इस तरह की सभाओं में महीनों या वर्षों तक भाग लेने से बचना पसंद करेंगे, भले ही कॉन्सर्ट हॉल फिर से खुल जाएं।
विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर के देशों को चाहिए कि कला और संस्कृति के उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएं और निवेशकों को इसमें निवेश के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि कला और संस्कृति उद्योग को अभूतपूर्व और आर्थिक नुकसान का सामना है और इस संकट के गंभीर परिणाम निकलेंगे।
लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है और हम जानते हैं कि दुनिया में हर चीज हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। कोरोना ने साबित कर दिया है कि इस वैश्विक गांव और दुनिया के सामने जो भी चुनौती आएगी उससे मुकाबले के नतीजे में रचनात्मकता भी आएगी। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के बीच वर्चस्व की दौड़ और एक तरफा वाद से दूर रहकर प्रभावी सहयोग होता है। जब संस्कृति और कला और किताबों के पढ़ने की बात आती है तो सभी राजनीतिक सीमाएं और पूर्वाग्रह हट जाते हैं और निष्पक्ष रहकर फैसले लिए जाते हैं और दुनिया के लिए नए रास्ते खुलते हैं।
दोस्तों, एक समय कनाडा के रहने वाले मार्शल मैक्लोहान ने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया एक गांव बन जाएगी और शायद अब परिस्थितियां ठीक वैसी ही हैं, क्योंकि संचार के कारण प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस और व्यापक नेटवर्क के विस्तार ने वैश्विक गांव की रूपरेखा तैयार की है और हम समय और स्थान की बाधाओं को टूटते हुए देख रहे हैं।
आज संचार के माध्यम से एक ऐसा गांव अस्तित्व में आया है और कला की भाषा के नाम से एक नई भाषा का गठन हुआ है, जहां सभी बिना किसी सीमा के एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं। पहले तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कोरोना वायरस इतनी तबाही मचाएगा और बदलाव लाएगा, चुनौती पेश करेगा और हर जगह अपनी छाप छोड़ेगा। लेकिन इसी शातिर वायरस ने एक अवसर भी पैदा किया है और वो इस सीमाहीन दुनिया में कला और संस्कृत और किताबों की एक ऐसी दुनिया है जो अधिक विस्तृत हुई है।
दोस्तों, इस दौरान संवाद इस तरह से हो गया कि दुनिया के सभी लोग एक दूसरे से निकट हो गए। रणनीतियों ने अधिक वैश्विक रूप ले लिया और कार्यक्रमों की योजना इस तरह से बनाई जाने लगी कि उन पर कोरोना का प्रभाव न पड़ सके। अगर पहले कोई सम्मेलन या फेस्टिवल किसी एक शहर में सीमित था तो अब उसने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है।
वास्तव में संकट के दौरान लोगों की जीवन शैली में बदलाव हुआ। महत्वपूर्ण बदलाव में से एक मीडिया के इस्तेमाल में होने वाला बदलाव था। एक दूसरा अवसर जो कोरोना ने प्रदान किया है, दुनिया भर के विद्वानों और लेखकों से संपर्क करना है। दुनिया भर के विशेषज्ञों के अपने घरों में बैठकर विशेष विषयों पर आयोजित होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने से प्रौद्योगिकी और नए संचार उपकरणों की अद्भुत शक्ति सामने आई है।
अनेक सामाजिक संगठनों और समूहों की गतिविधियों ने अलग ही रूप धारण कर लिया है। साइबर स्पेस को देखिए, प्रत्येक समूह अपनी रुचि के अनुसार संगीत कार्यक्रम पेश करता है और कंसर्ट का आयोजन करता है, किताबों का परिचय करवाता है और विभिन्न मास्क तैयार करता है और एक दूसरे की मदद करता है, यहाँ तक कि टीकाकरण के अनुभव को भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं।
माँ बाप शिक्षा की नई शैली में बच्चों का साथ दे रहे हैं और जो लोग साइबर स्पेस से दूर थे अब वो इससे जुड़ गए हैं ताकि शिक्षा के काफिले से पीछे न रह जाएं। अब हम सभी ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन सम्मेलन और वेबिनार जैसे शब्दों से अजनबी नहीं हैं और हम इन्हें दिन में कई बार सुनते हैं। मौजूदा दुनिया कोरोना के प्रसार के पहले वाली दुनिया से काफी अलग है। इस समय ऑनलाइन कारोबार भी खूब फल फूल रहा है।
कोरोना ने साबित कर दिया कि पीड़ित होने या बीमारी से बचने में हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम सभी का बराबर का हिस्सा है, इसलिए हमें नए अवसरों से लाभ उठाना चाहिए और जितना हो सके सहानुभूति और मोहब्बत को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना से मुकाबला और हर एक इंसान की जान बचाने के लिए किसी एक दूसरे से सहयोग करना इस वैश्विक गांव को बचाने का एक तरीका है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
श्रोताओ, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है farstoday.com/hi। हमारी ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।